شب یعنی یعنی مدد. بہت برسوں کے بعد شکاگو جماعت کی ملاقات کر رہا ہوں. مجھے یہ جماعت خانہ یاد ہے 1980 میں جب پہلی دفعہ میں آیا تھا. ان گئے 24-25 برسوں کے اندر شکاگو کی جماعت اور سارے یونائٹیڈ اسٹیٹس کی جماعت الحمدللہ بہت بڑی اور بڑی آباد بھی ہوئی ہے. لیکن ابھی جتنی آبادی آپ نے کی ہے وہ 10% ہے, 90% باقی ہے. سکھی رہو, آباد رہو, تندرست رہو, روزی رزق میں مولا برکت دے دے, اتفاق و محبت دے دے, فرمان برداری دے دے, دسواں سکریت میں پورے رہو اور خوب عبادت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقم الصلاة طرف النهار زلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نور خداوندی مولانا حضر امام کو سلوات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے یہاں انٹر ہوا تو مجھے اس وقت آپ کے جو بیٹھے ہوئے ہو اس میں خاص طور پہ جو جوان ہیں یعنی 15 سال کے نیچے ہیں ان کے دلوں کی وائبریشن میں نے محسوس کی. بڑے شوق سے آئے ہوئے ہیں یہاں آواز سننے کے لیے. میں نے یہ آیت مبارکہ اس لیے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک راز کی بات کہی ہے اور قائم کرو نماز کو, صلاۃ کو قائم کرو. جہاں جہاں قرآن پاک میں نماز صلاۃ کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا ذکر کیا. واقم الصلاۃ اور تم دعا کو یہ نماز کو صلاۃ کو قائم کرو. یعنی قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا اسٹیبلش کرو کہ اس میں بھول نہیں ہونی چاہیے اور مس نہیں کرنی چاہیے. اس آیا پاک کے اندر خدا تعالیٰ ہم کو یہ زور دے کے کہتا ہے کہ تم اپنی دعا میں ریگولر بنو. ہر جگہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں ذکر کیا ہے صلاۃ اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے. اور صلاۃ کے لیے یہ لفظ کہا ہے واقم الصلاۃ واتوا الزکاۃ. نماز کو, دعا کو قائم کرو, پکڑ کرو, ریگولر کرو اور زکوٰۃ دو. واتوا الزکاۃ یعنی دیا کرو زکوٰۃ کو. اس آیت میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے, اس میں صرف یہ ہے کہ اپنی دعا کو پکا کرو یعنی ریگولر کرو. ایک دن بھی ناغا نہ کرو. اور کیا کرو کہ طرف النہار دن کے دو کناروں پہ صبح اور شام دعا کو قائم کرو. پھر فرمایا زلف من اللیل, ایک پہر جب رات گزر جائے, سورج ڈوب جائے اس کے ایک پہر تک, ایک پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. یعنی آپ جو اگر 7 بجے دعا پڑھو تو 10 بجے کے اندر اندر جماعت کے طریقے سے دوسری دعا ہو جانی چاہیے. لیکن رسول اکرم کے فرمان میں سے, ہمارے اماموں کے فرمانوں میں سے ہمیں यहाँ तक भरा मिला है कि अगर हम जमात खाने में नहीं है, सफर पे हैं या अपने काम पे हैं, तो रात के 12 बजे तक, आधी रात तक हम दूसरी दुआ पढ़ सकते हैं। हम इसको दूसरी दुआ क्यों कहते हैं? और जो मगरिब की जो दुआ है, हम उसको पहली दुआ कहते हैं। हालांकि दिन उगता है सुबह, तो दिन के हिसाब से होना चाहिए कि सुबह की दुआ पहली, मगरिब की दुआ दूसरी और रात की दुआ तीसरी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी पहली दुआ है वो शाम की दुआ है, दूसरी दुआ है वो अशा की नमाज है, जिसको हम दूसरी दुआ सुनने की दुआ कहते हैं। फिर हसन कबीर जी ने अनंत अखाड़े में ये चीज हमको सिखाई है। आशा जी संजा बेड़ा मत कोई चूको, ये संज्ञा है, ये बिगड़ा हुआ लफ्ज है संध्या का संस्कृत के अंदर। जब ये सूरज ढलता है, लेकिन डूबने से पहले जब गुम होता है, उस मौका को, उस वक्त को संध्या कहा गया। और ये संध्या से संज्ञा हो गया, संज्ञा प्राकृत है, संध्या जो है वो संस्कृत है। ऐसे बहुत से अल्फाज हमारे ज्ञानों के अंदर हैं कि जो डिक्शनरी में नहीं मिले। अभी आप डिक्शनरी खोल के देखो, संध्या 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 नहीं मिलेगा, संध्या मिलेगा। जैसे कि हमारे ज्ञानों के अंदर है ऋषि सर ऋषि सर ऋषि सर, तो संस्कृत की या प्राकृत की डिक्शनरियों में हमें ऋषि सर नहीं मिलता, ऋषि वर मिलता है। तो ऋषि वर बिगड़ के ऋषि सर हुआ। ये चीजें जो हमारे ज्ञानों के अंदर हैं, वो हमें सीखनी चाहिए, और डिक्शनरियों से पता नहीं लगता। तो मैं ये कह रहा था कि पीर ने मगरिब की दुआ को पहली बारी कहा है, फिर दूसरी बारी हमारी जो दूसरी दुआ है, जिसको हम अशा की नमाज कहते हैं, ये दूसरी बारी है, और सुबह की जो दुआ है वो तीसरी बारी है। इसलिए ये पहली दुआ जो अभी हमने पढ़ी मगरिब के वक्त में, दूसरी दुआ जो रात के आधी रात तक जारी रह सकती है, और तीसरी दुआ है वो सुबह की दुआ है। अल्लाह ताला ने इस आया मुबारका के अंदर हमको तीन नमाजों का हुक्म किया है। वाकिमुस्सला तरफन नहार, दिन के दो किनारों पर, और जुल्फुन मिनल लैल, रात एक पहर गुजर जाए तो तुम दुआ पढ़ो। फिर खुदा कहता है, समझाने के लिए कहता है, इन हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, खरेखर तहकीक जो हसनात हैं, नेकियां हैं, युज़हिबुन सय्यिआत, बर्बाद करती हैं बदियों को, गुनाहों को। यानी खुदा का इशारा यह है कि तुम जो दुआ पढ़ोगे, ये नेकी है, इस नेकी से बहुत सी बदियां बुराइयां दूर होंगी। जालिका जिक्रा लिल ज़ाकिरीन, ये जिक्र है, यानी ये एक किस्म की नसीहत है उनको कि जो ज़ाकिरीन हैं, मुझे याद करने वाले हैं, ये उनके लिए है। जो मुझे याद करते हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि तुम अपनी दुआ बराबर पढ़ा करो, क्योंकि नेकियां बदियों को बर्बाद कर देती हैं। दुआ पढ़ना तो अजीम नेकी है। हमको क्यों ये जोर दिया गया कि तुम अपनी दुआ को रेगुलर पढ़ो? पहली चीज तो यह है कि हमारी आदत बन जाए। दुआ पढ़ने से हमारे अंदर रेगुलरिटी आती है, हमारी जिंदगी के काम काजों के अंदर हमें खुदा ताला एक लेसन दे रहा है कि हम अपने कामों के अंदर रेगुलर बने। ऐसा न हो कि कभी सुबह हुआ, कभी शाम हुई, कभी याद आया तो पढ़ लिया। मजहब इस तरह से नहीं पाला जाता। मजहब जो है वो एक तरीका है, मजहब एक डिसिप्लिन है, मजहब हमारी जिंदगियों को सुधारने वाला है। जैसा कि एक कपड़ा है, वो कपड़ा आदमी लपेट लेवे तो वो बात नहीं रहती कि उसको काट के, उसको सी के और फिर ये कमीज पहने, कोट पहने। मजहब ऐसा है, वो कपड़े को काट छाट के सी के हमारे बदन के फिट कर देता है। कपड़ा इस तरह से जिस तरह हम लेके लपेट लेते हैं, ये आज की दुनिया तो ठीक है, पुरानी दुनिया में भी ना था। हाँ, एक ऐसा जमाना था इस धरती के ऊपर कि जब इंसान जंगल में रहता था और नंगा रहता था, उसको ये शऊर नहीं था कि नंगा होना क्या है। लेकिन जब इंसान को ये शऊर आया तो उसने अपने सतर को छुपाना शुरू किया, पत्ते से अपनी शर्म की जगह को ढांप लेता था। कुछ अरसा के बाद सीखा तो उसने जानवरों को मार के उनकी खाल अपने बदन पे कमर पे लपेट ली। आहिस्ता आहिस्ता इंसान को शऊर होता गया, समझ आती गई और उसने फिर कपड़े की इजाद की। और कपड़े आज की दुनिया के अंदर कपड़े की जो इंडस्ट्री है वो टॉप ग्रेड के ऊपर है। कितने डिजाइन, कितने रंग, कितनी किस्में। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि हमारी जिंदगी के अंदर क्रूड होना, क्रूड का मतलब देखो, ये क्रूड ऑयल निकलता है जमीन में से, वो कोई काम का नहीं, उसको रिफाइनरी में भेजते हैं और रिफाइन करते हैं, उसमें से ग्रीस निकलती है और उसमें से चार पांच किस्म के फ्यूल्स निकलते हैं। सबसे पहले उसमें से जो चीज निकलती है तो एविएशन फ्यूल है, जो एरोप्लेन में काम आता है। उसके बाद फिर ये पेट्रोल निकलता है जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं। उसमें थिकनेस और थिननेस की भी बात आ जाती है, जिसको ऑक्टेन वैल्यू कहते हैं। आमतौर पर हम अपनी गाड़ियों में 87, 89 या इस किस्म की ऑक्टेन वैल्यू अपने पेट्रोल में डालते हैं। उसके बाद केरोसिन निकलता है और केरोसिन के बाद फिर ग्रीस रह जाती है, ऑयल, इंजन का ऑयल बनता है। एक ही क्रूड ऑयल में से कितनी चीजें निकलती है। इंसान ओरिजिनल हालत के अंदर, यानी उसको कुछ सिखाया न जाए तो वो क्रूडनेस है, कच्चा है। उस इंसान को सिखाया जाता है, जैसे कि एक बच्चा ले लो, बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसको कुछ ना सिखाओ तो वो क्रूड रह जाएगा, जंगली रह जाएगा। लेकिन हम बच्चे को छोटी उम्र से, जब से उसको शऊर पैदा होता है, तो सबसे पहला उसका जो गुरु है उसकी माँ है। माँ उसको खाना खिलाना सिखाती है, कपड़े पहनना सिखाती है, उठना बैठना सिखाती है। और जब कोई आदमी आता है, देखो बेटा ये मामू जान है, सलाम करो, मामू जान सलाम अलैकुम, मामू जान यारी मदर, देखो ये चाचा है। तो ये रिश्तेदारी भी हम माँ से सीखते हैं। माँ हमको सिखाती है और हमारे अंदर जो क्रूडनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है। मैनर्स, इखलाक, उठना बैठना, बोलना चलना, अदब आदाब, इखलाक, ये सब चीजें हम छोटी उम्र में सीखते हैं। इन तमाम चीजों के पीछे एक राज क्या है कि वो चीजें रेगुलर बने। अगर बच्चे को माँ ने पहले कहा कि देखो इस तरह खाओ, तो उसने माँ के सामने इस तरह खाया, लेकिन फिर खेलने चला गया, दूसरी दफा खाने के लिए बैठा तो फिर भूल की, उसने गलती की, माँ कहती है ऐसे नहीं, तुमको कहा जाएगा ऐसा करो। ये रेगुलरिटी है। तीन वक्त की दुआ जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है। मैं अपनी आवाजों में कहा करता हूं, मैं इस तरह से कहता हूं अपनी बहनों को, बेटियों को, कि जब तुम्हारे पेट में बच्चा रहे तो उस वक्त से अपनी दुआ बंदगी, मजहब की जितने भी अमाल करो, तो उस बच्चे का भी नाम लो, या मौला मैं दुआ पढ़ती हूँ, मैं न्याज पीती हूँ, मैं ये करती हूँ, तो मैं अपने बच्चे की नियत भी करती हूँ। वो मौजूद जो माँ के पेट में पल रहा है, उसकी भी नियत साफ करो तो उसको इसका रूहानी बदला मिले, इवज मिले, उसके ऊपर असर हो रहे। उस वक्त जब नशोनुमा पा रहा है, माँ के पेट के अंदर उसकी बढ़ोतरी परवरिश हो रही है, उसके अंदर ये रूहानी ख्यालात जमा होते रहे। मुझे ऐसा ख्याल है कि चौथा वीक है, लास्ट मंथ टाइम मैगजीन में आपको बहुत से लोग पढ़ते होंगे, मैं 50 बरस से टाइम मैगजीन पढ़ता हूँ। टाइम मैगजीन में चौथा, तीसरा या चौथा पिछले हफ्तों की बात करता हूँ, महीना हुआ टाइम मिला तो उसमें रिपोर्ट आई, साइंटिस्टों ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान में एक ऐसा जीन है कि जो खुदा ताला के ऊपर ईमान रखता है, यानी फेथ जो है अब वो जीन की तरफ ले रहे हैं। इंसान के अंदर बहुत से ऐसे जीन जहन के जो उसके माँ बाप से मिलते हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा, खासतौर पे जो मेडिकल साइंस पढ़े हुए हैं, कि हर इंसान के अंदर 23 क्रोमोसोम्स, माँ के 23, बाप के 46 क्रोमोसोम्स आते हैं। बाप से भी मिलते हैं, माँ से भी मिलते हैं, और बाप को उसकी माँ से और बाप से मिले, माँ को उसकी माँ से उसके बाप से मिले। ये कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट जो है इजीली समझ नहीं आता, लेकिन ये जब चीजें आती हैं तो इंसान एक यूनिट बनता है। ये यूनिट बनने से पहले मल्टीपल यूनिट होता है माँ के साथ, माँ के पेट में रहता है, माँ का खाना खाता है, माँ जो सोचती है वो सोचता है। माँ अगर गमगीन है तो बच्चा गमगीन है, माँ अगर खुशी है तो बच्चा खुशी है। माँ के तमाम असरात उस बच्चे के ऊपर पड़ते हैं कि जो पेट में पल रहा है। सबसे पहले ब्रेन बनता है, नीचे का हिस्सा बहुत छोटा रहता है, पहले ब्रेन बनता है, और ब्रेन बनने के लिए अंदर खुदा ताला की अजमत देखो कि बच्चे के अंदर लाइफ तो है, लाइफ है, मगर रूह नहीं है। रूह रहती है इंटेलिजेंस में, अक्ल के अंदर रूह रहती है, और जो लाइफ है वो दिल में रहती है। हम लाइफ को जान कहते हैं, मेरी जान निकल गई, मतलब ये कि मैं इतना डर गया कि शायद मैं मर जाऊंगा। जान जो है वो हार्ट में रहती है, और बच्चे का हार्ट जो होता है उसमें जान रहती है, सारा बच्चा पलता है, लेकिन सिर बड़ा हो रहा है ताकि तैयार हो सके इंटेलिजेंस आने के लिए, अक्ल पैदा करने के लिए। अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा करता है ब्रेन में कि ब्रेन बढ़ता रहे बढ़ता रहे। जब उसके अंदर अक्ल का इस्तेमाल होने की ताकत आ जाती है तो खुदा ताला उसमें रूह को दाखिल करता है, और जिस दिन रूह दाखिल होती है उस दिन फर्स्ट बीट होती है हार्ट की, और माँ महसूस करती है कि बच्चे का हार्ट स्टार्ट हो गया। ये बात लगभग 16 वीक के बाद, यानी 4 महीने खत्म होते हैं तभी होती है। खुदा ताला की जो क्रिएशन है, खुदा ताला की जो बनाई हुई चीजें हैं, उसके स्टडी करने से इंसान को उसकी अजमत का पता लगता है। तो इस तरह चौथा महीना खत्म होने से पहले उसमें तो रूह दाखिल होती है, लाइफ तो पहले थी। इस लाइफ को हम अपने इस्माइली तरीके के हिसाब से, हमारे पीर की लैंग्वेज में हम इसको जीव कहते हैं। महीना हमें ये जानना जरूरी है कि जो रूह है वो पाक है। आपको पता है अल्लाह के नामों में एक नाम है अल बारी, रूहों का पैदा करने वाला। रूह जो है वो पाक है, वो खुदा का नूर है। दुख सुख रूह को नहीं है, सजा जजा भी रूह को नहीं है, अमाल का असर रूह के ऊपर नहीं पड़ता सिवा इसके कि रूह को, रूह की जो एनर्जी मिलनी चाहिए बद अमाल करने से, रूह की तरफ से आने वाली एनर्जी हमें नहीं मिलती। और रूह की जो एनर्जी है वो अपने की मार्फत हमारे माइंड को मिलती है, और माइंड जो है वो फिर बहुत से गुल खिलाता है, इल्म मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, इंट्यूशन मिलता है, फार साइट मिलती है, ऐसे बहुत से खुदा ताला की बख्शिश इंसान को मिलती है। लेकिन अगर हमने बद अमाल किए तो माइंड पॉल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है, स्मोकी बन जाता है, तो रूह की एनर्जी माइंड हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए इबादत बड़ी जरूरी चीज है कि आदमी बैठ कर खुदा ताला के इस नूर जो उसके अंदर है, यानी रूह जो है वो नूर है, इस नूर से हम एनर्जी देवे। इबादत करने वाले जो लोग हैं उनको ये एनर्जी मिलती है। तो अल्लाह ताला कहता है जालिका जिक्रा, ये जिक्र कि तुम अपनी नमाज को रेगुलर करो, और कि जो नेकियां हैं वो बलियों को बर्बाद कर देती हैं, ये मेरे जाकिरीन के लिए है। एक एक आयत का आप तजिया करो, एनालिसिस करो उसका, तो आपको उसमें से बड़ी खूबियां नजर आती हैं। अभी दुआ की बात मैं कर रहा था कि बच्चा इस लायक हो गया कि दौड़ता फिरता है, दुआ का टाइम हो गया, बच्चे को बोला इधर बैठो, दुआ पढ़ने शुरू किया, बच्चा बैठा है तो माँ कहती है सजदा कर, हाथ रख, कहती है सजदा कर। ये जो चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं ये उसकी लाइफ में डिसिप्लिन पैदा करता है, और वो बच्चा फिर इस लाइफ बन जाता है। मैं कभी कभी अपनी बस सफर के अंदर मैं देखता हूँ, माँ बाप जमा खाने चले जाते हैं, बच्चे बाहर धन पछाड़ करते हैं, झींगा मस्ती करते हैं, लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, इसका गुनाह माँ बाप के ऊपर है। अपने बच्चों को छोटी उम्र से, कितनी छोटी उम्र कि जो वो इस लायक बन सके कि सीख सकता है। देखो ये $1 है, ये $2 है, उसको कॉइन्स देके सिखाओ, 1, 2, 3, 4, इस एज के अंदर से भी पहले, यानी पहले कैसे, पहले के पेट में है, उस जमाने से इस बच्चे के लिए तैयारियां करो। और जब बड़ा होता है तो फिर ज़ाहरा तौर पे वो हमारे मजहब की तालीम देता है, कि आखिर बड़ा हो जाता है और ज्यादा समझ पड़ती है तो सवाल करता है, मम्मी हम जमात खाने के अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ हम ऐसा मुंह के ऊपर 3 दफा हाथ क्यों फिराते हैं? दो तो जवाब उसको। बच्चा नहीं समझता, दुआ खत्म होती है तो हम ऐसा अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان علي امير المؤمنين علي الله ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھایا تو یہ کھٹک اس کے دماغ میں رہ جائے گی۔ ہر شے جو بچہ پوچھتا ہے اس کو اس بات کے لیے تسلی اطمینان ہونا چاہیے، اور اگر ہم کو یہ سوال کا جواب نہیں آتا تو کسی بزرگ سے پوچھو۔ رسول اکرم کی یہ عادت تھی، حضور جہاں سجدہ کرتے تھے نماز ختم ہو جانے کے بعد، وہ جگہ جہاں آپ نے سجدہ کیا ہے وہاں دھول ہے، خاک ہے، وہاں کی خاک لے کے اپنے چہرے پہ ملتے تھے، عجز و انکساری، ہیوملٹی ظاہر کرنے کے لیے کہ اے اللہ میں نے جہاں سجدہ کیا ہے وہاں کی خاک میں اپنے منہ کو ملتا ہوں، اپنے آپ کو خاکی سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو ناچیز سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو عجز و انکساری کے ساتھ تیرا بندہ سامنے کے لیے۔ تو اس طرح ہم 3 دفعہ اس جگہ کے جہاں ہم نے سجدہ کیا ہے وہ اللہ کے پاؤں ہیں، اس کے پاؤں کی خاک اٹھا کے ہم اپنے چہرے کو ملتے ہیں۔ یہ عجز و انکساری بھی ہے اور چہرہ نورانی بنتا ہے۔ ہمارے مذہب کی ایک ایک شے کے اندر حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں کو ہمیں جاننا چاہیے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر لازوں میں ان باتوں کے ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس قسم کا جو علم جو میں اس وقت آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ہمیں اپنے اسکولوں میں بچوں کو سکھانا چاہیے۔ बड़ों को भी सीखना चाहिए। कई चीजों के अंदर ये बात है। अभी देखो, आप कभी किसी सुन्नी मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ने में शामिल हो जाओ, अल्लाह का नाम ही है, लेकिन जब नमाज खत्म हो जाती, मैंने सुन्नी नाम इसलिए लिया कि शियों के अंदर ये चीज नहीं है, और हालांकि सुन्नी इमामत को नहीं मानते, लेकिन मैं इसमें से एक हिकमत निकालना चाहता हूँ आपको कहने के लिए। नमाज पूरी हो गई, सलाम हो गई, ये सलाम पहले राइट साइड पे है, अस्सलामुअलैका रहमतुल्लाह वबरकातुहु, अस्सलामुअलैका रहमतुल्लाह वबरकातुहु, और फिर नमाज पढ़ाने वाला सीधा बैठ के सामने जो मेहराब है जिसकी तरफ, क्या ये घड़ी घड़ी ऊंचा नीचा होता रहता है, जो मेहराब है वो काबा है, किबला है, तो उस मेहराब की तरफ मुंह करके कहता है अस्सलामु अलैका अलैका या अय्युहन नबीयो, या ऐ नबी अलैहिस्सलाम आपको हमारा सलाम हो, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबीयो। ये फितरा जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, सीगा हाजर में है, जैसे कि नबी सामने बैठे हैं तो उनको कह रहे हैं या नबी आप पर हमारा सलाम हो, तो क्या वहां नबी है? जाहिर में तो वहां नबी नहीं है, लेकिन नबी को हाजर समझा गया है, इस वजह से उसको कहा गया है या नबी अस्सलामु अलैका आपके ऊपर हमारा सलाम हो। मैंने ये बात इसलिए बताई है, ये मैंने बात इसलिए जिक्र किया है कि हम नबी को हाजिर समझते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, हम मुर्दा नहीं समझते, मतलब कि नबी नूरानी हालत में मौजूद है। यही हाल हमारा है कि हम अपने जमात खानों के अंदर अल्लाह के इस नूर को, नबी के इस नूर को, कि जिसको हम हाजिर इमाम कहते हैं, वो हर वक्त हाजिर और मौजूद समझते हैं। इसलिए जब हम दुआ पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम हजर इमाम के सामने बैठ के दुआ पढ़ते हैं, अगरचे जहरा तौर पे हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती, लेकिन वो हजर है, मौजूद है, और इसीलिए हम उसको कहते हैं हाजर वल मौजूद। और हम दुआ पढ़ते हैं, दुआ क्या है? भीख मांगना। दुआ का मतलब है खुदा के पास भीख मांगना, और सलात का मतलब भी दुआ ही है। नमाज अरबी लफ्ज नहीं है, नमाज तो था हकीकत में ईरान के अंदर रसूल अकरम के जमाने के अंदर, वो जो लोग थे वो आतिश परस्त थे, आग पूजा करते थे, जैसे कि पारसी लोग, वो लोग अपनी इबादत को नमाज कहते थे, और जब वो मुसलमान हो गए तो उन्होंने इसी इबादत को नमाज ही रखा और अरबी लफ्ज सलात कबूल न किया, तो वो नमाज 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 मशहूर हो गई। हमारी दुआ है वो नमाज है, सलात है, लेकिन दुआ का मतलब सलात बंदगी। इसलिए हमारी ये जो तीन वक्त की दुआ है, मौलाना हज़रत इमाम ने बहुत इंसिस्ट किया है कि दुआ का मतलब जानना चाहिए, क्योंकि अरबी हमारी लफ्ज इबादत में के जिंदगी में यूज नहीं होती, अरबी हमारी जबान नहीं है, इसलिए हम बहुत सी गलतियां करते हैं। आज ही मैंने दुआएं दो दुआएं सुनी, तो तीसरे पार्ट के अंदर जब हम नीचे उतरते हैं तो हम उधर बोलते हैं कि तवस्सलु इंदल मसाइब। अब ये मसाइब है, मसाहिब नहीं है, नहीं है, एच नहीं है, ई है, तवस्सलु इंदल मसाइब। मसाइब जो है वो मुसीबत की जमा है, मुसीबत एक सिंगुलर, मसाइब प्लूरल, तो अपनी मुसीबतों के अंदर वसीला मांगो, अपनी मुसीबतों के अंदर तवसलु, इंदल मसाइब बिमौला के हाजर मौजूद, अपने मौला के जो हाजिर और मौजूद है उसकी मदद मांगो, उसका वसीला मांगो। इसी तरह से हमारा जो पहला पाठ है सूरतुल हम्द है, इसके अंदर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसके पहले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हीन नहीं, वहां भी बहुत से बोलने वाले नस्तहीन कहते हैं, नस्तहीन गलत लफ्ज़ है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस्तताअत करना, मदद करना, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तेरे ही पास से हम मदद चाहते हैं। तो इस किस्म के बहुत से अल्फाज हैं कि जो हमारी हमारी दुआ के अंदर गलत तरीके से बोले जाते हैं, ये हमारी बेदरकारी लापरवाही है। इमाम की कुछियों के अंदर कभी सवाल करते हैं तो मौलाना इमाम कायम को बहुत से लोग मेजोरिटी काहिर कह देते हैं, हालांकि कायम है, ये कायम होना चाहिए, मौलाना कायम, मौलाना काहिर नहीं। और इसी तरह से हजरत इमाम मोहतमदी को मोहतदी कहते हैं, मोहतदी नहीं है, मोहतमदी नहीं है लेकिन मोहतदी है, सॉरी अल इमामुल मोहतदी। ऐसे बहुत से अल्फाज हैं अरबी जबान के जो हमें अच्छी तरह से सीखने चाहिए, और खसूसी तौर पे हमारा जो कलिमा है, देखो दीनदारो हमारा मजहब इमाम के फरमान पे चलता है। अगर इमाम कहते हैं शाम को तुम दुआ मत करो, ढोल बजाया करो, तो हमारी इबादत यह है कि हम ढोल बजाएं। इमाम जो कहता है ना वो करो। एक दफा बैतुल ख्याल में हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दत्तार आए, और बैतुल ख्याल की एक छोटी किताब होती थी, बटन वाली किताब, वो गुजराती में बहुत देर के बाद आई लेकिन पहले कोचकी में प्रिंट हुई। तो इमाम बैतुल ख्याल का फरमान है, लेकिन मैं कहता हूँ मौला फरमाया कि हमें तुम्हारा मुर्शिद चाहिए, हम तुम्हारे मुर्शिद हैं, हमारा हुक्म मानो, हमें दिवस ना भाग मार रात कहिए तो ये रात छे, हमें रात ने दिवस कहिए तो ये दिवस छे, यानी हम तुमको कहें कि इस वक्त रात है लेकिन सूरज चमक रहा है तो समझो कि मौला ने कहा कि रात है मगर सूरज तो चमका हुआ है, तो इसका कुछ मकसद है। रात का मतलब अंधेरा है, अंधेरा नादानी है, बेइल्मी है, जहालत है। तो अगर दिन के वक्त भले सूरज चमक रहा है लेकिन अंदर जहालत है तो दिल के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा, वो रात है। उस वक्त इमाम कहते हैं कि हाफिज शिराजी ने अपने एक शेर में कहा है, वो मैं सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोयत के सालिक बेखबर नबुवत ज़ाहिर रस्त रमजिर है। जो सालिक तुम्हारा जो सालिक है, उस्ताद है तुम्हारा जो मुर्शिद है, वो बेखबर नहीं है इबादत के रस्तों के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। वो मैं सज्जादा रंगी कुन, तेरा जो मुसल्ला है जिस पे बैठ के तू नमाज पढ़ता है, अगर तेरा मुर्शिद कहता है कि इसको शराब के अंदर डबो के फिर बैठ के नमाज पढ़ो, तो मौला कहते हैं कि हाफिज ने लिखा है कि उसके अंदर तुम इनकार मत करना, क्योंकि सालिक मुर्शिद तेरा बेखबर नबुवत जरा हो रस्म मंजिल है, वो अपनी मंजिल पर पहुंचाने के रास्ते से वाकिफ है। हमारा जो तरीका है इस्माइली तरीका, ये इस्लाम का एक बेस्ट तरीका है, इसलिए कि मैं इस्माइली हूँ ये कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा तरीका हकीकतन अगर आप पढ़ो और स्टडी करो तो इस्लाम का बेस्ट तरीका है। हज़रत इमाम ने एक फरमान में फरमाया कि मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ लेते हैं, तो समझते हैं कि हमारा दीन पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। नमाज इसलिए बताई गई और रसूल अकरम ने और अल्लाह ने जब नमाज का हुक्म दिया तो इसलिए कि उसके पहले की हिस्ट्री पढ़ो तो जो जहालत थी उसको तोड़ने के लिए, यकजहती के लिए, यूनिटी के लिए और समझदारी के लिए नमाज कायम की गई। अल्लाह कहता है दिन रात के दो किनारों पे रात के आधी रात तक अपनी नमाज को पक्का करो, रेगुलर करो और नेकियां बदियों को खा जाती हैं, बर्बाद करती हैं। जाकिरीन के लिए, इबादत करने वालों के लिए, मुझे याद करने वालों के लिए ये एक टिप है जो मैं देता हूँ। अल्लाह कहता है ऐ मोमिनो, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दुआ पढ़ते हैं लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ 10-20% लोग ऐसे हैं हमारी जमात में कि जो तीन वक्त बराबर नमाज दुआ नहीं पढ़ते, और खसूसी तौर पे वो लोग जो जमात खाने हर रोज नहीं आते, वो कभी ना कभी एक दुआ भूल जाते हैं। अमूमन ये दुआ अगर जमात खाने नहीं आते तो पहली दुआ कभी पढ़ ली तो ये जो हमारी दूसरी दुआ है अशा की नमाज है या तो वो भूल जाते हैं या फिर सुबह की नमाज भूल जाते हैं। हमें दुआ रोज पढ़नी चाहिए। दुआ के अंदर हम जो मांगते हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए। हमारी दुआ के 6 हिस्सों में ऊपर के जो आधे हिस्से हैं उसमें कुरान शरीफ की आयतें हैं, सूरा है, एक कंप्लीट सूरा सूरतुल फातिहा है वो पहली पार्ट में है, और कंप्लीट सूरा सूरतुल तौहीद या सूरा इखलास जो है वो आखिरी 6ते हिस्से के अंदर है। अल्लाह का रसूल कहता है कि एक दफा सूरतुल हम्द पढ़ो तो तुमने सारा कुरान पढ़ा, तुम्हें इतना सवाब मिलता है एक दफा। तो 3 दुआएं पढ़ने से हमने 3 दफा सूरतुल फातिहा पढ़ी तो उसका मतलब हुआ कि हमको 3 दफा कुरान पढ़ने का सवाब मिला। अल्लाह का रसूल फरमाता है कि 3 दफा अगर तुमने सूरतुल इखलास पढ़ा तो तुमने सारा कुरान खत्म किया, इतना तुम्हें सवाब मिलता है। तो 3 दुआओं के अंदर हम सूरतुल इखलास 3 दफा पढ़ते हैं तो वो 1 दफा कुरान की तिलावत का सवाब मिलता है। तो अगर हम 3 दुआएं बराबर पढ़ें तो 4 दफा कुरान शरीफ की पूरा किया तिलावत की हमें इतना सवाब तो महज इन 2 बातों में मिलता है। बाद में जो दूसरा पाठ है उस पाठ के अंदर हमको अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, कुरान की एक आदत है, बाज़ चीजें वो सिर्फ ईमान वालों को ही कहता है और बाज़ चीजें वो सारी दुनिया के इंसानों को कहता है। यहाँ खुदा ताला कहता है ऐ ईमान वालों, लेकिन एक और जगह अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के इंसानों को एड्रेस किया, या अय्युहुन नास कद जकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ दुनिया के इंसानों तुम्हारी तरफ भेजा गया, तुम्हारे रब की तरफ से एक प्रूफ भेजा गया। तो यहाँ इस आयत के यानी दूसरे पार्ट में या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह खुदा की इताअत करो, अतीउ रसूल रसूल की इताअत करो, वा उलिल अम्र मिनकुम और तुम्हारा जो मालिक है, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा हाकिम है, अमर देने वाला जो है उसकी इताअत करो। इसके ऊपर, इस आयत के ऊपर शिया सुन्नी में 1300 साल से झगड़े चले आ रहे हैं। सुन्नियों में इमामत का कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए वो इस बात को नहीं मानते कि जिस तरह शिया मानते हैं। शिया का कहना ऐसा है जैसा हमारा कहना है, क्योंकि हम भी शिया हैं, कि खुदा ताला का नूर रसूल अकरम की वफात से बंद नहीं हो गया, खुदा की हिदायत बंद नहीं हुई, नबूवत बंद हो गई, वही का आना बंद हो गया, खत्म हुआ, क्योंकि अल्लाह कहता है मैंने दीन को पूरा कर दिया, अभी नए हुक्म देने की जरूरत नहीं है, मगर हिदायत खुदा की जारी है। और वो जारी हिदायत के लिए लाजिम है कि एक مالک ہونا چاہیے کہ جس کا حکم چلے, حاکم ہونا چاہیے, اور وہ حاکم امام ہے. ہم حضرت امام کی جو تابع داری کرتے ہیں وہ رسول کی تابع داری کے برابر ہے, اور یہ اللہ کی تابع داری کے برابر ہے. اس لیے میں نے کل ہی اٹلانٹا کی ایک آواز میں ذکر کیا کہ قرآن شریف ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے, سچ ہے؟ ہاں سچ ہے. لیکن اللہ بولا, منہ تو محمد کا تھا, منہ محمد کا تھا, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اس میں ایک سٹلٹی ہے, جس طرح سے ہمارے چوتھے پاٹ کے اندر یہ ہے, اے محمد جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے حقیقت میں انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, یعنی نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا خدا نے. اسی لیے خدا تعالیٰ کے اس نبی نے کہا مجھے وہی اتری, مجھے اللہ نے یہ کہا. ابھی محمد کے منہ سے خدا کا کلام نکل رہا ہے. ہم اسماعیلیوں کے لیے یہ چیز بڑی سمجھنے جیسی ہے, جس طرح مرتضیٰ علی نے فرمایا کہ میں بولتا ہوا قرآن ہوں, یعنی میرا جو منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ قرآن ہے. یہ ہماری حقیقت اسماعیلی مذہب کی ہے, کہ جس طرح سے محمد کے منہ سے قرآن نکلا تو ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. مرتضیٰ علی کہتے ہیں کہ میں جو بولتا ہوں میں خود قرآن ہوں. یہ دعویٰ کیا ہے, مگر ایون سنی لوگوں نے بھی اس دعوے کو غلط قرار نہیں دیا. یہی چیز حقیقتاً ہے کہ ہمارا امام جس کو ہم اللہ کا نور کہتے ہیں, اور اس نے سر عام لوگوں میں کہا ہوا ہے عام دی ہول دی نور آف امامت, جب وہ بولتا ہے تو جو کچھ بھی وہ بولتا ہے وہ اللہ کے کلام کے برابر ہے. دیکھو میں آپ کو ایک چیز اور بولنا چاہتا ہوں. رومی سنی مسلمان تھا, بعد میں اسماعیلی بنا اور ایک اسماعیلی کا مرید بنا, مولانا شمس تبریز کا مرید بنا. اس نے شمس کے عشق کے اندر مثنوی لکھی. رومی شاعر تھا نہیں, لیکن شمس کے عشق نے اس کو شاعر بنا دیا. ایک سنی عالم مولانا جامی عبد الرحمان جامی, وہ کہتا ہے کہ یہ جو رومی کا جو کلام ہے یعنی مثنوی ہے وہ قرآن ہے. فارسی زبان کا مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. عبد الرحمان جامی سنیوں میں ایک بہت بڑا امام تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ مثنوی جو ہے رومی کی, یہ قرآن فارسی زبان کا قرآن ہے. رومی کے کلام کو اس نے قرآن کا درجہ دیا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں بولتا ہوا قرآن ہوں, تو رومی سے علی کا کلام تو بہت بلند ہے. یہی بات ہماری ہے کہ ہمارا مولا ہمارا امام جو فرمان کرتا ہے وہ قرآن کی تفسیر کے درجے کی چیز ہے, وہ قرآن ہے. اور اسی لیے امام سلطان محمد شہزادہ صاحب نے بھی فرمایا کہ پیروں نے محنت کر کے جو تمہیں گنان رچ کے دیے ہیں, تو یہ جو گنان ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. اے مومنوں, میں عرض کرتا ہوں آپ کو, آج جانا عرض کرتا ہوں, پلیز انگلش میں کہتے ہیں, پلیز مہربانی کرو اپنے آپ کے اوپر, اپنے آپ کے اوپر مہربانی کرو. ہر روز آدھا پونا گھنٹہ اسماعیلی مذہب کی چیزیں پڑھا کرو, ہسٹری پڑھو, فرمان پڑھو, اپنے مذہب کی کتابیں پڑھو, تو آپ کا جو دماغ ہوگا وہ بڑھتا جائے گا, ایکسپینڈ ہوگا. اپنے مذہب کی چیزیں پڑھو. انڈیا, پاکستان, افریقہ, یورپ اور یہ نارتھ امریکہ میں ہمارے جتنے بھی اسماعیلی ہیں, ہمارے اندر پڑھنے کا شوق بہت کم ہے. पढ़ने का शौक हमारी जमात में बहुत कम है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अच्छी तरह से पढ़ते नहीं, अपने खुसूसन अपने मजहब की चीजों को पढ़ो कि हमारा इस्माइली मजहब है क्या। इमाम सुल्तान मोहम्मद शादातार के फरमान पढ़ो, मौला मुर्तजा अली के फरमान पढ़ो। मैं खास तौर पे आपको आजिज़ाना अर्ज करता हूँ कि आप किसी भी तरीके से मौला मुर्तजा अली की जो मशहूर किताब है उस किताब को खरीदो। उर्दू में भी मिलती है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी हो चुका है, गुजराती में भी मिलती है। मौला मुर्तजा अली का ये जो किताब है एक मारकातुल आरा चीज है। इसी तरह से हमारे दूसरे इमामों के बहुत से फरामीन हैं, उनको पढ़ा करो और पुरानी हिस्ट्री को अपने दिल में रखो। मौला मुर्तजा अली की ये किताब जिसको नहजुल बलाग कहते हैं, वो बेवकूफों को आकिल बना देती है, बेवकूफों को आकिल बना देती है। नहजुल बलाग जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इल्म देती है। नहजुल बलाग बहुत आला चीज है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम का रसाला कि जिसके अंदर मौत का जिक्र बहुत किया गया है, मौत को याद कर इसी तरह से हमारे एक और इमाम हुए, इमाम मुस्तनसिर बिल्ला सेकेंड, उन्होंने एक किताब लिखी जिसको पीर का दर्जा दिया। और ये पीर का दर्जा हमारे पीर की पुठियों में आ गया। जब ही पीर ताजुद्दीन गुजर गए तो उस वक्त इमाम मुस्तनसिर बिल्ला थे सेकेंड, उन्होंने इंडिया के अंदर किसी और पीर को नहीं भेजा और हिंदुस्तान की जमात में से कोई वफद लेके मौला के हुजूर में गए, या मौला हमारे गुनाह बख्शो, हमें पीर दो। मगर जब वहां पहुंचे तो इमाम मुस्तनसिर बिल्ला जो थे ना गुजर चुके थे, इमाम अब्दुस्सलाम का जमाना था। वहां जाके जब हिंदुस्तान की जमात के ऑफिसरों ने अर्ज की तो इमाम अब्दुस्सलाम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की लिखी इस किताब को पीर का दर्जा देके कहा यह ले जाओ, ये तुम्हारा पीर है। ये क्या है? मौलाना मुस्तनसिर बिल्ला के फरमान है। मैं उसी हकीकतों को वापस कह रहा हूं कि इमाम का जो कलाम है वो नूर से भरा हुआ होता है। पंडियात जवां मर्दी, पंडियात कहते हैं नसीहतें जवानों के लिए। इस पंडियात जवां मर्दी के दो हिस्से हैं, असल फारसी जबान है लेकिन इंग्लिश भी हो चुका है, फारसी में अपने उर्दू में भी मिलती है, गुजराती में भी मिलती है। ये पढ़ा करो, बहुत सी अच्छी नसीहतें हैं, मोमन के निशानियां जाहिर की गई हैं। और थोड़ा ऊपर आके देखो तो मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जो फरमान हैं, कलाम इमाम मुबीन के दो हिस्से हैं, 700-750 पेज की ये किताब है। मैं बसा औकात इन दो किताबों को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्माइली फेथ कहता हूँ। अभी पब्लिश नहीं होती लेकिन कहीं से भी मिले लाइब्रेरी वगैरह में से तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के ये फरमान पढ़ा करो। इसमें बहुत से इस्माइली मजहब के मुतालिक सवालात के जवाब दिए हैं मौलाना। और अब इस वक्त मौलाना हजर इमाम के फरमान हमारे सामने हैं। जिस दिन तख्त नशीन हुए मौलाना हजर इमाम जुलाई की 11 तारीख 1957 में इमाम बने, लेकिन तीसरे दिन डिक्लेरेशन हुई। उसी दिन से हजरत इमाम के जो फरमान आप पढ़ते रहो तो आपको लास्ट इस इलाके के तकरीबन 47 इयर्स के अंदर हकीकत का पता लगे कि किस तरह हजरत इमाम ने आस्ते आस्ते हमारी जमात को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाने की कोशिश की है। हजरत इमाम के फरमान और ये सब किताबें, एक और अच्छी किताब का नाम मैं लेता रहता हूँ और वो यह ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन, इरशादुद्दीन शाह की अंग्रेजी में है लेकिन असल फारसी में मिलती है, रिसाला दर हकीकत दीन, उर्दू तर्जुमा भी है, गुजराती में भी है। ऐ मोमिनो, अपने मजहब को पढ़ा करो और अगर अच्छी तरह से अरबी समझ सकते हो तो मैं कहता हूँ कुरान पाक पढ़ा करो। कुरान पाक की तिलावत से इंसान को दीन दुनिया की नियामतें मिलती हैं। लेकिन एक आदमी जो अरबी नहीं जानता, मिसाल देता हूं कि किसी का लिखा हुआ तर्जुमा हमने पढ़ा, अभी मशहूर तर्जुमों के अंदर जो मैं ज्यादा पसंद करता हूं और हज़रत इमाम ने भी उसको पसंद किया है तो वो पिक्थॉल का तर्जुमा है इंग्लिश में। चलो भाई, पिक्थॉल का तर्जुमा हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम कुरान नहीं पढ़ रहे, पिक्थॉल का किया हुआ तर्जुमा पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस किताब में पिक्थॉल जो समझा है ना वो लिखा है, वो सच है कि नहीं हमें पता नहीं क्योंकि हम अरबी नहीं जानते। इसी तरह से ये अब्दुल्ला यूसुफ अली का तर्जुमा है, अभी यूसुफ अली का तर्जुमा और ये पिक्थॉल के तर्जुमे में बहुत सी तफावत भी होती है, इसने कुछ कहा उसने कुछ समझा। तो जब हम किसी का तर्जुमा पढ़ते हैं ना तो हम हकीकत में अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ते, हम उस आदमी ने जो समझा है वो पढ़ते हैं, ये ठीक नहीं है। तो फिर क्या करें, आप ढूंढो मुंबई में किसी को कि इस्माइली प्रिंटिंग प्रेस ने आज से 50 बरस पहले कुरान शरीफ का तर्जुमा गुजराती में निकाला था, लेकिन अफसोस यह रह गया कि पूरा मुकम्मल ना हो सका, 10 पारे लिखे गए, मगर इन 10 पारों के अंदर भी कुरान शरीफ की गहरी हकीकतों को इस्माइली पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया है। ढूंढो इस तर्जुमे को भी, है गुजराती में, लेकिन ये चीज पढ़ोगे तो इस्माइली पॉइंट ऑफ व्यू नजर आएगा कुरान शरीफ के अंदर। ऐ मोमिनो, हमारी दुआ की मैं बात कर रहा था, जब दुआ खत्म होने के नजदीक आती है तो हम अपने तमाम इमामों का नाम लेते हैं। सूरतुल इखलास के बाद हम रसूल अकरम को, पंचतन पाक को याद करते हैं और तमाम इमामों का वास्ता देके अपनी दुआ को कबूल कराने की अर्ज करते हैं। इसमें एक और बात भी है कि इन पाक इमामों का नाम लेने से हिस्ट्री जिंदा रहती है और ये आदत हमारी शुरू से चली आती है, हर जमाने के अंदर हमने अपनी दुआ अपनी नमाज के बाद अपने इमामों के नाम लिए हैं, पीरों के नाम भी लेते थे, और ये एक किस्म का सबूत है इस बात का कि ये सिलसिला जो इमामों का है, रसूल अकरम और मुर्तजाली से चला आता है, वो हक है, सच्चा है, इसलिए कि हर जमाने में इस्माइलियों ने अपने इमाम का नाम अपनी इबादत के बाद लेना शुरू किया। तो हम जब इन इमामों का वास्ता देते हैं हमारी दुआएं कबूल होती हैं। रसूल अकरम फरमाते हैं मेरा वास्ता दे के दुआ मांगा करो, और उसके बाद जो शिया थे वो अपने इमामों का वास्ता दिया करते थे, बाद के मौलाना अली मौलाना हुसैन इन पाक इमामों का नाम लेते हैं। और ऐ मोमिनों, मैंने वाज़ों में बहुत दफ़ा कहा हुआ है, दुआ पढ़ाने वाला जो है वो कह रहा है अल्लाहुम्मा बाद के मौलाना अली, आप अपने दिल के अंदर बोलो अलैहिस्सलाम, बाद के मौलाना हुसैन अलैहिस्सलाम, मौलाना ज़ैनुलाबदीन अलैहिस्सलाम बोलने वाला नाम लेने, आप अपने दिल में बोलो अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम, तो आपने हर इमाम के ऊपर सलवात पढ़ी, इतना सवाब पाओगे। मजहब बहुत अच्छा है, दिल को तकवीयत देता है, सुख देता है, इत्मीनान देता है, तसली देता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, बिला शक अल्लाह के जिक्र करने से कल्ब को इत्मीनान मिलता है, ये तसलियाँ मिलती हैं। सुखी आबाद रहो, मौला आपकी नेकों में पूरी करे, हकीकती समझ देवे, बदियों बुराइयों से बचावे, अपनी मोहब्बत में इजाफा करे। मौला आपकी, आपकी आल औलाद की, आपकी आने वाली तमाम जनरेशन को अपनी गुलामी में, अपनी इबादत में, अपनी हिकमत में रखे, दुख सुख में दूर करे। मौलाना हाजर इमाम इत्तफाक को मोहब्बत देवे, रोजी रिजक में कमानी में बरकत देवे। मौलाना हाजर इमाम हर किस्म की मुसीबतें दूर करे, और ख़ास तौर पे मेरी दुआ ये है कि मौला आपके दिलों को अपने नूर से भरपूर करे। शुक्रिया बात ऐसा।